तो आज हमारी कथा का शीर्षक है, क्या शीर्षक है आज हमारी कथा का शीर्षक क्या है? आज मैं कौन सी कथा सुनाने वाला हूं? राजा ययाति की कथा सुनाने वाला हूं। तो राजा ययाति, वैसे जो लोग इतिहास पुराण जो पढ़ते हैं और सुनते हैं उनमें तो बहुत प्रख्यात है, लेकिन आजकल की अर्वाचीन यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हमारी है, उस कारण से इतने महान राजा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ये राजा ययाति की कथा महाभारत में बड़े विस्तार से दी है, श्रीमद् भागवत पुराण में 2 अध्याय में दी है और दूसरे पुराण में भी इनकी कथा आती है। तो बात ऐसी थी कि एक बार देवता असुरों के बीच में बहुत जोर से संग्राम छिड़ गया, युद्ध होने लगा। इस ब्रह्मांड में देवता भी हैं और असुर भी हैं, ये कोई आपकी हैरी पॉटर पता नहीं, हैरी पॉटर वाली कहानी नहीं है ये कि किसी ने कुछ नॉवल लिख दिया और उसके बेसिस पर मूवी बन गए। महाभारत की कथा ऐसी नहीं कि किसी की मनगढ़ंत कहानी को लिख दिया गया, ये सब हकीकत है। तो इस ब्रह्मांड में देवता भी हैं और असुर भी हैं, जैसे मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनु की संतान हैं। आज के टेक्स्टबुक्स में क्या पढ़ाते हैं, मनुष्य किसकी संतान है? मनुष्य किसकी संतान आज के टेक्स्टबुक्स में क्या पढ़ाते हैं कोई बताइए? स्कूल में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यहां लोग नहीं पढ़ते तो अच्छी बात है, पढ़ते तो मुसीबत है। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, मनुष्य किसकी संतान है? बंदर की संतान है ना मनुष्य, स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ते ऐसा? स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं कि मनुष्य बंदर की संतान है। कितनी भयानक बात है ये कि मनुष्य बंदर की संतान है, क्योंकि यदि मनुष्य बंदर की संतान है तो फिर अभी के बंदर मनुष्य पैदा क्यों नहीं कर रहे, अभी के बंदर बंदर ही पैदा कर रहे हैं। यदि हम लोग सही के बंदर से आए हैं तो फिर अभी के बंदर बंदर की कोई प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसमें से फिर मनुष्य का बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, बंदर से बंदर का ही बच्चा निकल रहा है। उसका अर्थ है कि बंदर से मनुष्य पैदा हुई, बात गलत, सरासर गलत है, ये धोखाधड़ी है। लेकिन आजकल की शिक्षण प्रणाली हमें यही सिखाती है, लेकिन हमारे वेद वाक्य और हमारे शास्त्र के जो वचन थे वो ऐसे नहीं थे, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं थी। हमारे वेदों का ज्ञान जो है उसमें कभी किसी प्रकार की क्षति नहीं है, त्रुटि नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य मनु की संतान है, हम सब मनु की संतान है। तो अभी के जो मनु है, और मनु क्या, कौन मनु क्या है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते और जाते हैं, कितने 14 ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते और जाते हैं, उसमें से अभी कौन से मनु चल रहे हैं आप बताइए? 7वें मनु चल रहे हैं, अभी 7वें मनु है, 7वें मनु का मनमंत्र चल रहा है, उनका नाम है वैवस्वत मनु, क्योंकि वो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र हैं। हमारे जो सूर्यदेव हैं उनका नाम है विवस्वान। ये सब नाम याद रखने चाहिए, कटरीना कैफ और शाहरुख खान के नाम याद रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। या फिर आपने ये सब नाम याद रखने चाहिए। तो हमारे सूर्यदेव का नाम है विवस्वान, और उन विवस्वान के पुत्र हुए मनु, और चूंकि वो विवस्वान के पुत्र हुए इसलिए उनका नाम हुआ वैवस्वत मनु। तो अभी सातवें मनु चल रहे हैं, इसके बाद और सात मनु आएंगे, उसके बाद ब्रह्मा का एक दिन खत्म होगा। तो युग का साइकिल है, बहुत विस्तार से कभी बताऊंगा। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा चौड़ा होता है, संक्षिप्त में बता सकता हूं। सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग को चतुर्युग कहते हैं। उस चतुर्युग गुना 1000 कर लीजिए, उस चतुर्युग को का जो चक्र है उसको 1000 बार घुमा दीजिए तो ब्रह्मा का 12 दिन होता, ब्रह्मा का 12 घंटा होता, ब्रह्मा का 12 घंटा जब वो काम करते हैं उतने समय में 14 मनु आते और जाते हैं। वो जब ब्रह्मा का एक दिन वो खत्म हो जाता है उसके बाद ब्रह्मा जी शयन करते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन समाप्त होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 100 साल जीते हैं, है ना, तो बहुत लंबा चौड़ा आयुष है ब्रह्मा जी का। तो हमारे शास्त्र में इन मनुओं के बारे में वर्णन किया है। हम सब मनुष्य की संतान है, हम लोग बंदर की संतान नहीं है। तो जिस प्रकार से मनुष्य का अस्तित्व है उसी प्रकार से इसी ब्रह्मांड में देवता असुरों का भी अस्तित्व है। देवता अर्थात सुर, और दैत्य और दानव को क्या कहते हैं, असुर कहते हैं। सुर कौन है, कल मैंने सुर और असुर की व्याख्या ली थी, और इसमें से कोई मुझे बताएगा, मेरे प्रवचन में सो तो नहीं रहे सब लोग, नहीं तो फिर क्या होता है कि बकता बकता है और सोता सोता है, बकता बकता रहता है और सुनने वाले सोते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुर किसको बोलते हैं और असुर किसको बोलते हैं, बताइए, कोई हाथ खड़ा करके जिसको पता है सुर किसको कहते हैं। हाथ खड़ा करिए जिसको पता है सुर किसको कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी तो मादक द्रव्य तो हमें क्या करना है, उसको पीकर वैसे भी गोवा में बहुत सारे लोग पीते हैं मादक द्रव्य। सुर अर्थात जो विष्णु का भक्त है उसको सुर कहते हैं, और जो विष्णु का भक्त नहीं है उसको असुर कहते हैं। ये दो ही तो श्रेणियां हैं मनुष्य की, लोगों की पूरे ब्रह्मांड में, वो देवता है या मनुष्य है या असुर है, दानव जो भी है, जो विष्णु का भक्त है उसको सुर कहते हैं, जो विष्णु का भक्त नहीं है उसको असुर कहते हैं। बात खत्म हो गई। तो क्या हुआ कि देवता और असुरों में बहुत ही भयानक संग्राम छिड़ गया, एक बार युद्ध छिड़ गया, क्योंकि दोनों में इस ब्रह्मांड के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध चलता रहता है। तो देवता और असुरों के बीच में संग्राम छिड़ गया। तो देवताओं ने पुरोहित के पद पर भृगुवंशी बृहस्पति का वर्णन किया। बृहस्पति वो देवताओं के पुरोहित है, उसी प्रकार से असुरों ने पुरोहित के पद पर किसका वर्णन किया, असुरों के पुरोहित कौन है, शुक्राचार्य, कवि के पुत्र शुक्राचार्य। तो क्या हुआ कि देवासुर संग्राम हो रहा था, तो दोनों पक्ष के योद्धा की मृत्यु तो हो रही थी, कुछ यहां से मदद कुछ वहां से मर रहे थे। तो असुरों में एक महान गुण यह था, उनका प्लस पॉइंट था कि उनके पुरोहित शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। तो जब भी असुरों की मृत्यु होती थी असुर सैनिकों की, तो शुक्राचार्य उनको मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। मंत्र विद्या उनके पास थी, वो मंत्रोच्चार करके उनको पुनः जीवित कर देते थे। लेकिन देवताओं में ये गुण नहीं था, क्योंकि बृहस्पति के पास मुझे समझने की विद्या नहीं थी। देव सैनिकों की मृत्यु होने के बाद पुनः जीवित नहीं होते थे, लेकिन असुरों के सैनिक शुक्राचार्य की मंत्र विद्या से पुनः जीवित हो जाते थे। समझ में बात? तो उस कारण से क्या हुआ कि असुरों की संख्या बढ़ने लगी, असुर सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी, देवताओं की देव सैनिकों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि देव सैनिक मर रहे थे, पुनः जीवित नहीं हो रहे थे। असुर सैनिक मर जाते थे, शुक्राचार्य पुनः जीवित कर देते थे, तो देवताओं की संख्या कम होने लगी। तो फिर इंद्र को हो गया टेंशन, अभी क्या करें, देवताओं में चिंता व्याप्त तो हो गई, चिंतित हो गए सब देवता। इसलिए इंद्र को आके रख के वो लोग गए बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था कच्छ, कच्छ के पास गए। ये कच्छ बड़ा ही गुणवान था और बहुत ही निपुण था सभी कार्य में और शास्त्र में पारंगत। तो कच्छ के पास गए और कच्छ के चरणों में निवेदन किया कि ब्राह्मण तुम हमारा कल्याण करो, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ और उनकी बेटी, शुक्राचार्य उनकी बेटी, शुक्राचार्य की बेटी का नाम किसी को पता है जो भागवत पढ़ता है? उसको पता होगा, देवयानी। शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी, जो बहुत ही सुशील, बहुत ही गुणवान और बहुत ही सुंदर कन्या थी। शुक्राचार्य के बाद देवयानी के बारे में वर्णन किया है कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके उसके समान सुंदर नहीं थी, इतनी सुंदर थी। तो कच्छ को बोला गया, देवताओं ने बोला कि तुम शुक्राचार्य के पास जाओ और उनकी और देवयानी की जी जान से सेवा करके मृत संजीवनी विद्या सीख कर लाओ, नहीं तो फिर हम लोगों के हाथ से पूरे ब्रह्मांड का आधिपत्य चला जाएगा, अंततः असुर विजयी बनेंगे। और जब असुर शासन करते हैं तो क्या होता है? अभी जो हो रहा है वो होता है। कलयुग में किसका शासन है? कलयुग में असुरों का शासन है। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो नेता लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से एक भी वैष्णव है? दिखाई दे रहा है एक भी वैष्णव? नहीं है, सब के सब एक नंबर के असुर। तो जब असुर शासन करते हैं तो ऐसी हालत होती है जो अभी हो रहा है। तो कच्छ से विनती की गई, तो कच्छ ने बोला ठीक है, क्योंकि तो कच्छ वैसे भी बृहस्पति का पुत्र था, उसका तो कार्य ही था देवताओं का कल्याण करना, जीव मात्र का कल्याण करना, वो ब्राह्मण का तो वही कार्य होता। इसलिए देवताओं का हित करने के लिए कच्छ गए शुक्राचार्य के पास और देवताओं ने यह रहस्य की बात बता दी थी कि यदि तुम्हें शुक्राचार्य को प्रसन्न करना है तो तुम देवयानी को प्रसन्न जरूर करना, क्योंकि शुक्राचार्य की जान टिकी है अपनी कन्या में। यदि देवयानी खुश तो शुक्राचार्य खुश। ऐसे देवताओं ने कच्छ को पढ़ा दिया, कच्छ गए शुक्राचार्य के पास बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़ के। और क्योंकि देवता और असुरों में हमेशा लाड डाट, हमेशा कंपटीशन लगी रहती है, स्पर्धा लगी रहती है, उस कारण से बृहस्पति और शुक्राचार्य में भी कंपटीशन रहती थी। तो शुक्राचार्य और बृहस्पति में भी हमेशा लाड डाट लगी रहती थी, स्पर्धा लगी रहती थी। लेकिन जब कच्छ आए उनके सामने, बड़े विनीत भाव से आए, उनके चरणों में प्रणाम किया, शुक्राचार्य के चरणों में, और कच्छ ने कहा कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपकी सेवा करना चाहता हूं।
तो शुक्राचार्य ने उसका स्वागत किया। शुक्राचार्य को पता था और अपना परिचय भी दिया कच्छ ने, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। तो शुक्राचार्य को पता कि ये बृहस्पति का पुत्र है, फिर भी उसमें, क्योंकि वो पक्का ब्राह्मण था कच्छ, तो ये योग्य पात्र था, ये योग्य शिष्य था, शिष्य बनने की योग्य था कच्छ, इसलिए शुक्राचार्य उसको स्वीकार किया। हालांकि वो देवताओं का हित करने वाला व्यक्ति था, फिर भी शुक्राचार्य उसको स्वीकार किया। तो ये लोग इतने ब्रॉड माइंडेड रहते थे, संकीर्ण बुद्धि वाले नहीं होते थे, बहुत उदार बुद्धि वाले होते थे ये लोग। तो शुक्राचार्य ने बोला कि कच्छ, तुम्हारा सम्मान करने से मेरे द्वारा बृहस्पति का भी सम्मान होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। फिर कच्छ ने शुक्राचार्य के सामने ब्रह्मचर्य का पालन का प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली, और फिर उसके व्रत का पालन करते हुए वो शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। और उसी प्रकार से देवयानी जो अभी तरुण अवस्था में थी उसकी भी सेवा करने लगी। थोड़ा सोचिए, कच्छ जो थे वो ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ले चुके थे और देवयानी तरुण अवस्था में थी और बहुत ही सुंदर थी, फिर भी कच्छ का इंद्रिय संयम इतना था कि कभी मन से भी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत कभी तोड़ा नहीं, मन से भी नहीं। तो कच्छ इतना इंद्रिय संयमी थे। तो शुक्राचार्य की तो सेवा करते ही थे, साथ में देवयानी चूंकि तरुण अवस्था में थी तो जवानी में लोगों को क्या पसंद आता है, गाना गाना, नाचना, घूमना फिरना, ये सब अच्छा लगता है। तो देवयानी के भी ऐसे ही शौक थे, और ये जो कच्छ थे वो इन सभी चीजों में एक्सपर्ट थे। वो बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जैसे कुछ लोग हारमोनियम में बहुत बढ़िया बजाते हैं, मृदंग, फिर अलग अलग प्रकार के वाद्य अच्छा बजाते थे, बहुत निपुण थे, और उनका कंठ भी बड़ा सुरीला था, बहुत ही सुंदर गीत गाते थे और नृत्य में भी माहिर थे, अलग अलग प्रकार की मिमिक्री भी कर सकते थे। कुछ लोग मिमिक्री में एक्सपर्ट होते हैं, मिमिक्री पता है ना आपको, किसी और की नकल करना, उसको मिमिक्री कहते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की मनोरंजन करने वाली वाले कार्य में कच्छ निपुण थे। तो देवयानी का खूब मनोरंजन करते थे। ऐसे शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा करते करते वहां 500 साल बीत गए। तो फिर क्या हुआ कि एक बार कच्छ जंगल में गए थे गाय को लेकर, शुक्राचार्य गाय को लेकर गए थे और उनको समीधा इत्यादि भी लाना था यज्ञ वगैरह करने के लिए। तो असुरों को पता चला, शुक्राचार्य असुरों के पुरोहित थे, तो असुरों को पता चला कि शुक्राचार्य के एक शिष्य हैं जिसका नाम है कच्छ और वो बृहस्पति के पुत्र हैं और हो ना हो वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसा असुरों को पता चला। तो असुरों ने क्या किया, कच्छ को पकड़ा, उसको मार डाला, मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते और सियार को खिला दिया, स्टोरी खत्म हो गई। कच्छ को मार दिया, अभी आगे स्टोरी कैसे बढ़ी, नहीं, कच्छ को मार दिया तो क्या हुआ, शाम के समय देवयानी राह देखती थी, देवयानी ने नोटिस किया कि जो कच्छ गाय लेकर गए थे वो कच्छ के बिना ही लौट गई, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, सूर्यास्त हो गया। तो देवयानी को चिंता हुई, वो सोचने लगी कभी तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कच्छ हमेशा देवयानी का प्रिय कार्य करते थे, इसलिए देवयानी कच्छ से बहुत आसक्त हो गई थी, उसके बिना रह नहीं पाती थी। बहुत आदर सम्मान करती थी टच का और बहुत उसे अटैच हो गई थी। तो देवयानी को चिंता होने लगी कि कच अभी तक लौटा नहीं, तो अपने पिताजी के पास गई। बोले कि पिताजी सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, गाय वैसे ही लौट कर आ गई, बिना कच के ही लौट रहे और लौट आई, पता नहीं कच का क्या हुआ, कहीं मर तो नहीं गए या किसी ने मार तो नहीं दिया। तो शुक्राचार्य ने पता लगा लिया अपनी वो तो त्रिकालग्न है अपनी, ऑफकोर्स त्रिकालग्न होने की मर्यादा होती होगी, लेकिन उन्होंने उनकी दिव्य शक्ति से पता लगा लिया। उनको पता चला कि असुरों ने मिलके कच को मार डाला है और उसके टुकड़े करके कुत्ते और सियारों को खिला दिया। तो शुक्राचार्य की बहुत छोटी बात थी, उन्होंने क्या किया, अभी देवयानी तो रोने लगी, देवयानी बोले कि मैं तो कच के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, मुझे कच चाहिए कैसे भी करके। तो शुक्राचार्य तो अपनी बेटी के आंख में आंसू नहीं देख पाते थे, बोले बेटी तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने कच का आवाहन किया मृत संजीवनी विद्या से और बोले आओ कच तुम आओ। तो जैसे उन्होंने वो विद्या के द्वारा उसका आवाहन किया, जिस जिस कुत्ते और सियारों ने उसका मांस खाया था उसका पेट फाड़ फाड़ के कच बाहर आ गए और जुड़ गए, असेंबली हो गई और कच वापस जीवित हो गए। शुक्राचार्य ने जहां उनको आह्वान किया था वहां आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। देवयानी देखकर बहुत खुश हो गए, देखे कितनी अद्भुत विद्या है, ऐसे कोई विद्या जानता है क्या, आजकल तो कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट लोगों को बोलो कि आप मरे हुए आदमी को जिंदा कर दो, ये साइंटिस्ट गधे हैं, साइंटिस्ट सब गधे हैं आज के, क्या बोलते हैं कि रासायनिक पदार्थों के संयोजन से चेतना उत्पन्न होती है और उसमें जब डिस्टर्बेंस आ जाता है फिर मृत्यु हो जाती है, ऐसा ये गधे लोग बोलते हैं। तो इनको बोल सकते हैं कि ठीक है यहां लाश पड़ी है, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का संयोजन ठीक से नहीं है, मतलब कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, उसमें विक्षेप हुआ है, तो आप उसको ठीक कर दो, उसको ठीक करके फिर उसको जीवित कर दो, क्या समस्या है। आप सब जानते हो ना कि रासायनिक पदार्थों से चेतना उत्पन्न, तो आप उसको ठीक कर दो, लेकिन नहीं कर पाते हैं। आज तक कोई माइकलाल पैदा हुआ जिसने मरा हुआ मनुष्य को छोड़िए मरे हुई चींटी को जीवित कर दिया, कोई साइंटिस्ट आजकल ऐसा पैदा हुआ आज तक, कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए स्पेशल मृत संजीवनी विद्या चाहिए। मृत संजीवनी विद्या अर्थात वो मंत्र से होता है, वो एक प्रकार की संजीवनी विद्या है। दूसरी है मृत संजीवनी जड़ी बूटी जो हनुमान जी लेने के लिए गए थे हिमालय में, पता है ना स्टोरी आपको। और तीसरा होता है मृत संजीवनी मणि जो नागलोक में होती है रसातल में, भूमंडल से नीचे की तरफ जाएं तो छठा तल है रसातल, उस रसातल में नागलोक में दिव्य मणि है। एक बार बभ्रुवाहन जो अर्जुन का चित्रांगदा से पुत्र था, चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी, तो अर्जुन की पत्नी, तो अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था बभ्रुवाहन। एक बार बभ्रुवाहन और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया, बाप बेटे में युद्ध छिड़ गया, उसकी स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, पिछली बार सुनाई थी शायद मैंने, वो माता जी के घर पे प्रभा विष्णु प्रभु के घर पे सुनाई थी कथा, बभ्रुवाहन और अर्जुन की कथा। तो उस समय उलूपी जो नाग कन्या थी वो भी अर्जुन की पत्नी थी, तो क्या है कि बभ्रुवाहन ने अर्जुन का शिरच्छेद कर दिया था, अर्जुन को मार डाला था, तो उलूपी ने एक ब्राह्मण को नीचे प्रसादन में भेजा था संजीवनी मणि लाने के लिए और मणि से फिर उसको जीवित किया था, बहुत लंबी चौड़ी कथा है। तो ऐसे तीन तरीके हैं किसी मृत व्यक्ति को जीवित करने के, लेकिन ये तो बहुत असाधारण बात है, कोई हर कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता, या बहुत ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, फिर भी सबके लिए तो संभव नहीं है। कुछ कुछ लोगों के पास ऐसी विद्या रहती है। ऐसी एक विद्या काश्यप नाम के ब्राह्मण को भी पता थी, जो परीक्षित को जब शाप मिला, परीक्षित को क्या शाप मिला, 7 दिन के बाद कौन आकर मार डालेगा, तक्षक। काश्यप ब्राह्मण को पता चला, उसके पास दुध संजीवनी विद्या थी, वो गया था परीक्षित को जिलाने के लिए, वापस जीवित करने के लिए, लेकिन तक्षक ने उसको वापस लौटा दिया था, उसको मुंह में डाल के। वो कथा आती है महाभारत में। तो ये शुक्राचार्य ने उसको मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया कच को। तो वापस थोड़े समय ठीक ठाक चला, इस असुरों को पुनः पता चला, अरे कच तो अभी भी जीवित है, कच को देखा वापस जंगल में। तो अब की बार उन्होंने, असुरों ने कच को, उसको पकड़ गए, उसके टुकड़े टुकड़े बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके, और फिर समुद्र में फेंक दिए। अरे समुद्र में से कैसे जीवित होकर आए, उसने भी फेंक दिया। तो वापस दिव्यानी देखने लगी, संध्या का समय हो गया, सूर्यदेव अस्ताचल को लेकर चले गए, अभी तक कैसे लौट कर नहीं आए, चिंतित हो गए दिव्यानी। दिव्यानी वापस अपने पिताजी के पास गई, बोले पिताजी पिताजी कच के बिना मैं प्राण त्याग कर दूंगी, कैसे भी करें कच चाहिए मुझे। तो शुक्राचार्य ने बोले ठीक है बेटा, अभी मैं जीवित कर देता हूं। तो वापस कच का आवाहन किया, समुद्र में से वापस कच बाहर निकला और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ऐसे कुछ समय बीता। अभी असुरों ने पुनः देखा इसको, कच को, सोचने लगे बार बार जीवित हो जाता है, पता नहीं गुरुदेव के भी दिमाग में क्या भूसा घुस गया है, इसको बार बार जीवित कर देते हैं। असुर लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव उनको जीवित कर रहे हैं, उसी व्यक्ति को बार बार मार रहे हैं। इसको बोलते हैं गुरुद्रोह, गुरु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, गुरुद्रोह कर रहे हैं बार बार। तो असुर लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, है वो ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट माने मूर्ख। ओवर स्मार्ट जब बोलते मतलब वो मूर्ख व्यक्ति, इसका मतलब एक ही निकलता। तो असुरों ने सोचा आपको उपाय करना पड़ेगा इसका। तो इन्होंने क्या किया, आपकी बार युक्ति लगाई, कच को पकड़ा और उसको जला दिया, जला के उसका चूर्ण बना दिया, उसको चूड़ा बना दिया, और फिर सूरा में डाल के शुक्राचार्य को ही पिला दिया। शुक्राचार्य पी गए, शुक्राचार्य भोले तो उनको पता नहीं चला। तो शाम का समय हुआ वापस, दिव्यानी देखे कि अभी तक कच लौटे नहीं, तो चिंतित होने लगे। वो बोले कि पिताजी अभी तक कच नहीं लौटा, उसको जीवित करिए पुनः, मुझे लग रहा है वो फिर से मारे गए। तो बोला ठीक है मैं जीवित करता हूं उसको। तो शुक्राचार्य ने आवाहन किया मंत्र विद्या से, तो शुक्राचार्य के पेट में गड़बड़ होने लगी, कुछ गुड़ 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 होने लगा, क्योंकि उनके पेट पे है ना कच। तो असुरों ने उसको मार के मजीरा में डाल के पिला दिया, असुरा में डाल के पिला दिया धोखे से। तो कच शुक्राचार्य के पेट से धीरे से बोले, गुरुदेव मैं आपके उदर में हूं, अभी आपके पेट में हूं, आज्ञा करिए। तो शुक्राचार्य बोले कि अरे तुम मेरे पेट में कैसे पहुंच गए। तो कच ने बोला कि ये आपके जो शिष्य हैं असुर, उन्होंने मुझे जला के मेरा चूर्ण बना के सुधा में डाल के आपको पिला दिया। तो अभी तो शुक्राचार्य भी मुसीबत में पड़ गए, बोले ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो वो देवयानी को बोलने लगे, वो बोले कि बेटी तुम कच को भूल जाओ, क्योंकि तुम देख रही हो कि बार बार मैं कच को जीवित कर रहा हूं और ये बार बार मर रहा है, उसका अर्थ यह हुआ कि उसकी आयु समाप्त हो गई है, उसको भूल जाओ, क्योंकि अभी मैं वापस उसको जीवित कर लूंगा तो वो वापस मारा जाएगा। और तुम जरा देखो अभी तो अब की बात हो मेरे पेट में है, अभी या तो वो जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि उसको जीवित करने के लिए मुझे अपना पेट फाड़ना पड़ेगा। तो उस हालत में यदि कच्छ को जीवित करना है तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम कच्छ को भूल जाओ। देवयानी ने बोला मैं कच्छ के बिना चैन से नहीं रह सकती और आपका वध भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि आपके बिना मैं भी नहीं जीवित रह सकती, मुझे तो दोनों चाहिए। तो शुक्राचार्य तो बड़े चतुर हैं, क्योंकि असुरों के पुरोहित बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो शुक्राचार्य ने अपने पेट में स्थित कच्छ से बोला कि तुमने काफी समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तो अभी मैं तुम्हें अमृत संजीवनी विद्या देता हूं, तुम वही मेरे पेट में स्थित होते हुए ही तुम इस मंत्र विद्या को सीख लो, इस संजीवनी विद्या को सीख लो, मैं तुम्हें देता हूं और मैं उस विद्या से तुम्हें जीवित कर दूंगा। तुम जब बाहर आओगे तो मैं मर जाऊंगा, तो तुम उस मृत संजीवनी विद्या से मुझे जीवित कर देना। तो ना बात हो गई, समाधान हो गया। तो कच्छ ने बोला ठीक है गुरुदेव, जैसा आप ठीक समझे। तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सिखा दी कच्छ को, उसका आवाहन किया, कच्छ बाहर आ गए, शुक्राचार्य मर गए और कच्छ ने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। और उस समय कच्छ बताते हैं वो असुरों को, असुरों ने जो इस प्रकार से गुरुद्रोह किया उसको संबोधित करते हुए कच्छ बता रहे हैं कि शिष्य जो अपने गुरु के कृपा से बहुत ज्ञान प्राप्त करता है, उस शिष्य को गुरु का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए, गुरु के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए उसको, शिष्य को किसी भी हालत में, क्योंकि गुरुदेव का शिष्य के ऊपर बहुत धिक्कार होता है। किसी भी हालत में शिष्य को गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए, जो शिष्य गुरुद्रोह करता है वह निश्चित रूप से नरक में गिरता है। फिर उन्होंने शुक्राचार्य का पूजन किया, शुक्राचार्य उसे बहुत पसंद थे और ऐसे करके उनकी 1000 वर्ष की अवधि पूरी हो गई थी कच्छ की वहां। तो शुक्राचार्य ने बोला कि कच्छ अभी तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारी विद्या प्राप्त हो गई है और वैसे भी तुम्हारी यहां अवधि समाप्त हो गई है, तुम जा सकते हो, मेरी अनुमति है तुम्हें यहां से जाने के लिए। तो कच्छ ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया तो गए, फिर वो शुक्राचार्य से अनुमति प्राप्त करने के बाद वो गए देवयानी के पास और देवयानी का पूजन किया, उनकी वंदना की, स्तुति की देवयानी की और बोले कि अभी मुझे जाने की आज्ञा दो। तो देवयानी के ऊपर जैसे वज्रघात हुआ, क्योंकि देवयानी तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अचानक ऐसे छोड़ के चला जाएगा कच्छ। तो कच्छ को बुला रहे, तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के, मैं तो तुम्हारा मन से वरण कर चुकी हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, मेरा पाणी ग्रहण करो। तो कच्छ ने बोला कि तुम गुरु पुत्री हो, तुम गुरु की कन्या हो, मेरे गुरु की कन्या हो तुम, तो जितने पूजनीय शुक्राचार्य मेरे लिए है उतने ही पूजनीय तुम हो मेरे लिए, तो हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है। तो देवयानी बोलती है कि तुम मेरे गुरु के शिष्य हो, मेरे पिता के शिष्य हो, तुम मेरे पिता के शिष्य हो, मेरे सगे भाई नहीं हो, तो उस हालत में हम दोनों का विवाह हो सकता है और मैं तुम्हें धर्म संगत बात कह रही हूं तो तुम मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कच्छ तो इसके लिए तैयार नहीं थे, दोनों में काफी तर्क वितर्क हुआ, देवयानी ने अपने तर्क लिए, कच्छ ने अपने तर्क लिए। तो ये बात सुनकर कच्छ ने एक अल्टीमेट तर्क दिया जिसको देवयानी ठुकरा नहीं सकती थी, कच्छ शादी नहीं करना चाहते थे देवयानी से क्योंकि वे सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते। तो कच्छ ने बोला कि भामिन तुम जरा सोचो, मैं और तुम सगे भाई बहन हैं, ये तो अद्भुत बात हुई ना, कच्छ ऐसा कैसे बोल सकता है, देवयानी और कच्छ सगे भाई बहन कैसे हो सकते हैं। लेकिन बात ऐसी ही है, क्यों, क्योंकि देवयानी किसकी बेटी थी, शुक्राचार्य की बेटी, और कच्छ कहां रहे थे, शुक्राचार्य के पेट में रहे ना, राजमी शुक्राचार्य के पेट में रहे थे, इसलिए वो बोले कि हम दोनों सहोदरा हैं, तुम मेरी सहोदरा बहन हो, तुम शुक्राचार्य के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और मैं शुक्राचार्य के पेट में रहा हूं, इसलिए हम दोनों सगे भाई बहन हैं। सगे भाई बहन में शादी कैसे हो सकती है, तुम जरा सोचो। ये बात सुनकर दिव्यानी सर खुदाने लगी, बोले अभी क्या इस तर्क तो नहीं ठुकराया जा सकता। लेकिन दिव्यानी को आ गया क्रोध, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कामासक्त हो गई थी कस से। इसलिए दिव्यानी ने कच को शाप दिया कि तुम यहां जिस उद्देश्य से आए थे, जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए आए थे, वो तुम्हारी निष्फल हो जाएगी, वो तुम्हें काम नहीं देगी। तो कक्ष ने बोला कि मैंने तुम्हारे अंदर कोई दोष देखकर तुम्हें ये शादी के लिए मना नहीं किया, मैंने धर्म संगत बात सोचकर ही तुम्हें ठुकराया, इस कारण से तुम मुझे कोई भी शाप दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि तुमने ये शाप दिया है वो काम करेगा कि मेरी ये संजीवनी विद्या निष्फल हो जाएगी, मैं इस मंत्र को उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी और को सिखाऊंगा, वो तो उपयोग कर सकता है, और मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, क्योंकि तुमने बिना कारण मेरे धर्म संगत बात को ठुकरा कर तुमने मुझे शाप दिया है, तुम्हें भी कभी ऋषि कुमार ब्राह्मण कुमार प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें कभी ब्राह्मण पुत्र प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहते बहुत जल्दी से कच वहां से चले गए, देवलोक में चले गए, और देवलोक में जाकर उन्होंने ये विद्या इंद्र ने जिसको बोला उसको सिखा दी, इंद्र ने किसी और को नियुक्त किया तो उसको कच्छ ने वो विद्या सिखा दी, उनका काम हो गया, फिर संजीवनी विद्या उनके पास भी आ गई। तो फिर ये विद्या पाकर देवता लोग अभी इंद्र से बोलने लगे कि अभी हम असुर के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आप तैयार हो जाइए। तो देवराज इंद्र बोले ठीक है, थोड़े समय के बाद अटैक करेंगे हम लोग। उसके बाद देवराज इंद्र पृथ्वी पर आए और उस समय देवयानी और शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा है दानवराज वृष परवा की कन्या, नाम याद रखना, एक नाम बताया दिव्यानी, दूसरा नाम बताया शर्मिष्ठा। ये शर्मिष्ठा है असुरों के राजा जिसका नाम था वृषपर्वा, वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, वो भी रूप में देवयानी से कुछ कम नहीं थी, बहुत सुंदर थी, वो भी देव अप्सराओं को भी सौंदर्य में टक्कर मारने वाली थी, ये दानवराज की कन्या, और दोनों सखी थी, क्योंकि शुक्राचार्य तो असुरों के ही पुरोहित हैं, तो शुक्राचार्य की बेटी और दानवराज की कन्या शर्मिष्ठा, देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सखी थी। तो दोनों गए थे अपनी दूसरी सखियों और दासियों के साथ वंदे विहार करने के लिए। तो क्या हुआ कि एक बार वो जल में क्रीड़ा कर रहे थे अपने कपड़े तट पे उतार के, जलाशय में नग्न अवस्था में अंदर स्नान कर रहे, क्रीड़ा कर रहे थे, और देवराज इंद्र पृथ्वी पर आए जहां ये लोग स्नान कर रहे थे, और उन्होंने वायु का रूप धारण करके उनके कपड़े मिला दिए इधर उधर, उन्होंने अपने अपने जगह पे कपड़े रखे थे, शर्मिष्ठा देवयानी और दूसरी जो सखियां थी उन्होंने अपने अपने कपड़े अलग अलग जगह पे रखे थे। तो इंद्र ने आकर, इंद्र की एक कर्तव्य थी, उन्होंने सब कपड़े मिक्स कर दिए, सम्मिश्रण कर दिया उसका, और अचानक से वहां शिव जी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर पार्वती के साथ वहां से पसार हो रहे थे उस जगह से। तो शिव जी को देखकर ये सब वो सब जो कन्याएं थी हक्के बक्के हो गए, एकदम डर गए, क्योंकि डर गए अर्थात शिव जी है तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, शिव जी जा रहे थे वहां से, तो उस अवस्था मतलब उस सीन में वो लोग नंद अवस्था में स्नान नहीं कर सकते वहां, इसलिए जल्दी जल्दी सब तट पे आए और शिव जी का सत्कार करने के लिए वो अपने अपने कपड़े ढूंढने लगे, पहनने लगे। तो शिव जी तो वहां से तुरंत पसार हो गए, लेकिन क्या हुआ, जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी ने फिर शर्मिष्ठा से बोला कि तुम मेरी शिष्या होकर मेरे कपड़े पहनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये बात शर्मिष्ठा से सहन नहीं हुई, क्योंकि शर्मिष्ठा तो असुर की कन्या है ना, असुर राज की कन्या है, उसका टेम्परामेंट बहुत हाई रहता था, पारा चढ़ा रहता था हमेशा उसका। तो शर्मिष्ठा ने बोला, अरे मैं तुम्हारी शिष्या, तुम मुझे अपनी शिष्या बताती हो, तुम तो भीख मंगी की पुत्री हो, तुम्हारा जो बाप है वो असुर है ना, असुर तो कुछ भी बोलते हैं। बोला कि तुम्हारा बाप जो है वो मेरे पिता की सभा में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं बंदी जन की तरह, और उनकी स्तुति करते हैं, और उसे प्रसन्न होकर मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी का भरण पोषण करते हैं, तुम तो भीख मंगे की कन्या हो, और मेरे पिताजी तो किसी से दान लेते नहीं, उल्टा सबको दान देते हैं। तो ये बात देवयानी को बहुत चुभ गई। फिर देवयानी ने अपने तर्क दिए, दोनों अपनी श्रेष्ठता बताने लगे। शर्मिष्ठा बोल रही है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, देवयानी बोली मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। शर्मिष्ठा को आ गया क्रोध, बोले कि मुझसे युद्ध करना चाहती है, मुझसे बात युद्ध कर रही है, मैं तुमसे अपने बाहुओं से भी युद्ध कर सकती हूं, देखो मेरे पास ये खंजर है, ऐसा खंजर निकाल के दिखाया शर्मिष्ठा ने, असुर की कन्या है, असुर राज की कन्या है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि देवयानी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर ली, शर्मिष्ठा को सिद्ध कर दिया कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, शर्मिष्ठा से सहा नहीं गया। तो क्या हुआ, एक वहां अंधा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, तीनकों से भरा हुआ, शर्मिष्ठा ने उसको धक्का मार के देवयानी को फेंक दिया अंदर कुएं में, और अपनी सखियों को लेकर वहां से चली गई। वो जीवित है, मरी हुई है, शर्मिष्ठा ने परवाह नहीं की। तो काफी समय तक देवयानी अंदर पड़ी रही कुएं में, तो दैववश वहां नहुष नंदन राजा ययाति प्रसार हो रहे थे वहां से। राजा नहुष के बेटे, नहुष बहुत प्रख्यात कैरेक्टर है पुराणों में, इतिहास में, तो नहुष इतने पुण्यवान थे कि उसी शरीर में वो इंद्र के पद पर स्थापित हुए थे। जब देवराज इंद्र को शाप प्राप्त हुआ था, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे तीन पाप ऐसे किए थे, उसकी वजह से वो इंद्र पद से उनको निकाल दिया गया, ब्राह्मण का शाप था इंद्र को। उस समय देवराज इंद्र का पद खाली था, तो उस समय नहुष एक ऐसे समर्थ व्यक्ति थे, समर्थ राजा पृथ्वी के, जो इंद्र पद के ऊपर बैठ सकते हैं। उस समय नहुष राजा इंद्र के स्वर्ग के राजा बने, इंद्र बने थे। उस समय उन्होंने इंद्र की पत्नी शची का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, और फिर उनका पतन हुआ था, वो कथा है महाभारत में। उनको अजगर बना पड़ा, उनके भीमसेन के साथ उनकी मुलाकात, फिर भीमसेन को चक्कर दिया था, फिर युधिष्ठिर महाराज ने आकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया, फिर वो अजगर की योनि से मुक्त हुए, वो कथा है। उसी नहुष के पुत्र राजा ययाति, तो वो ययाति वहां आखेट के लिए निकले थे, आखेट अर्थात शिकार करने के लिए। राजा लोग अक्सर मृगिया करते थे, मृगिया अर्थात मृग माने वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहने वाला प्राणी, जरूरी नहीं है कि वो हिंसक ही होगा। मृग लोग कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, हिरण को लोग मृग कहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। मृग संस्कृत में शब्द है, एनी वाइल्ड एनिमल दैट कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड उसको मृग कहते हैं। जिसको आप पालतू प्राणी नहीं बना सकते, जिसको पाल नहीं सकते आप अपने घर में, उसको मृग कहते हैं, वाइल्ड एनिमल। तो क्षत्रियों को, राजाओं को ऐसे शास्त्र आ गया कि उनको वन में जाकर जंगली प्राणियों को चैलेंज करना, चुनौती देनी चाहिए, और उनके साथ उनको मारना चाहिए। उसके दो उद्देश्य थे, एक उद्देश्य था यह था कि राजा तो यदि युद्ध भूमि में खड़ा होगा तो उसको तो बहुत सारे लोगों को मारना होगा, तो यदि खून देकर उनको चक्कर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे कुछ लोगों को होता है ना, खून देख के चक्कर आ जाता है। तो राजा तो ऐसा कमजोर नहीं हो सकता, उसको तो युद्ध करना है, तो खून खराबा करना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। इसलिए उसको सलाह दी जाती है, तुम वन में जाकर जंगली प्राणियों को, जो हिंसक प्राणी भी होते हैं, उनको भी जाकर तुम चैलेंज करो, उनको मारो, ताकि तुम्हारा क्षत्रिय स्पिरिट डेवलप हो। दूसरा उद्देश्य यह था कि यदि जंगली प्राणियों को नहीं मारेंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल, उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर वो नगर में आकर लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, पेपर में न्यूज आता है, टीवी पर न्यूज आता है कि फलाने फलाने गांव में शेर आकर बच्चों को खा लिया, आदमी को खा लिया, ऐसे होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य था, तो राजा लोग अक्सर आखिर के लिए निकलते थे, शिकार के लिए निकलते थे। तो ऐसे ही यहां से निकले थे, तो दैववाश्व उसी वन में गए जहां शर्मिष्ठा और देवियां ने और दूसरी सखियां बिहार के लिए आई थी, और जहां कुएं में उसको फेंक दिया था शर्मिष्ठा ने देवियां को, वहीं से पसार हो गए थे ययाति। तो देवियां चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, ये आवाज ययाति ने सुनी। तो ययाति ने देखा अंदर कुएं में, तो एक बहुत ही सुंदर अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी कन्या वहां पड़ी हुई थी। ये देखकर ययाति को बड़ी दया आ गई, तो ययाति ने अपना हाथ फैलाकर दूसरे कुछ भी उपाय से देवयानी को बाहर निकाला। तो देवयानी इस बहुत ही अनुपम तेजस्वी पुरुष को देखकर बहुत चकाचौन हो गई, बहुत इंप्रेस हो गए उनसे, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति नहीं था। देवयानी ने उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं? तो ययाति ने बताया कि मैं नहुष का पुत्र राजा ययाति हूं, और इस समय इस धरातल का राजा मैं ही हूं, चक्रवर्ती सम्राट। और ययाति ने देवयानी को पूछा कि तुम इस कुएं में कैसे गिर गए, तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं जो संजीवनी विद्या से असुर को पुनः जीवित करने वाले हैं, उन शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। और देवयानी ने कहा कि आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, पानी माने हाथ, बोले आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। देवयानी के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्यों? क्योंकि देवयानी को ब्राह्मण पति नहीं मिलने वाला था, कल शाप लेकर गया था ना। विवाह यज्ञ के नियम है हमारे शास्त्र में, दो प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसको बोलते हैं? उच्च वर्ण का पुरुष अपने वर्ण या अपने से नीचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करें, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे ब्राह्मण पुरुष है तो वो ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय स्त्री, वैश्य स्त्री या शूद्र स्त्री से विवाह कर सकता है, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। उससे विपरीत प्रतिलोम विवाह किसको बोलते हैं? जैसे वैश्य पुरुष या क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं कर सकता, यानी क्षत्रिय वैश्य या शूद्र ब्राह्मण पुरुष के साथ शादी करेगी तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यदि ब्राह्मण स्त्री यदि क्षत्रिय वैश्य या शूद्र पुरुष के साथ विवाह करती है तो वो प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, और उस प्रतिलोम विवाह से वर्ण संकर प्रजा पैदा होती है। वर्ण संकर प्रजा कौन सी? जो अभी हो रही है वो। कलयुग में लोगों को वर्ण का भान नहीं है, वर्ण का ज्ञान नहीं है, कौन कौन से वर्ण में आता है, पैदा हुआ है और किसके साथ विवाह करा है किसी को पता ही नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? वर्ण संकर प्रजा पैदा हो रही है, क्योंकि सभी जगह प्रायः प्रतिलोम विवाह हो रहा है, और वर्ण संकर प्रजा हमेशा समाज में उत्पात मचाती है, क्योंकि वर्ण संकर प्रजा आसुरिक होती है, उसका दिमाग तमोगुणी होता है। इसलिए पूरी दुनिया में अभी अराजकता फैली हुई है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो इस अवस्था में क्या था, ये जो ऑफर थी देवयानी की, उसमें दोष था। यह आपने देखा इसमें बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि देवयानी है ब्राह्मण की कन्या और राजा ययाति खुद ठहरे क्षत्रिय, वो देवयानी को बोले कि हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है, इसमें महान दोष है और मैं तो ब्राह्मण से बहुत डरता हूं। तुम्हारे पिता शुक्राचार्य हैं, असुर के पुरोहित हैं, हम लोग उनसे कन्यादान पाने के योग्य नहीं है, तो मैं इसमें कैसे सहमति दे सकता हूं। तो देवयानी कह रहे कि ठीक है, तुम मेरे पिताजी से तुम मेरा हाथ नहीं मांग रहे हो, तो उनके देने से तो तुम मेरे साथ विवाह एक दिन करोगे। ऐसा करके देवयानी चुप हो गई और फिर राजा ययाति उससे अनुमति लेकर वहां से वापस अपने राज्य लौट गए, चले गए वहां से। अभी देवयानी के मन में बहुत बड़ा दुख था और क्रोध भी था, किसकी वजह से? संस्था की वजह से। तो वो तो एक पेड़ के पास गई और उसका आश्रय लेकर खड़ी हो गई और रोने बिलखने लगी, वहीं खड़ी रही, वापस नहीं लौटी, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया मैं उस राज्य में वापस नहीं लौटूंगी जहां मेरा अपमान हुआ। इसको शाम तक शुक्राचार्य चिंतित होने लगे, बोले देवयानी तक लौटी नहीं, इसलिए अपने भाई को बुलाया। भाई एक प्रकार की दासी, भात्री संस्कृत में बोलते हैं, जिसका नाम था धूर्णिका। तो धूर्णिका को बुलाया और भेजा उसको, देखो देवयानी कहां गई है, उसको ढूंढ के लाओ। तो धूर्णिका को पता था कि शर्मिष्ठा और दूसरी सखियां गई थी वन में विहार करने के लिए, तो देवयानी के पद चिन्हों का अनुसरण करती करती वो वहां पहुंची जहां वो गई थी। उस समय मोबाइल नहीं थे, अरे भाई तुम कहां हो देवयानी, ये मोबाइल वगैरह ये यंत्र विद्या जो सब तमोगुणी है, तो वो लोग सुसंस्कृत लोग उसका उपयोग नहीं करे। बहुत इजी रास्ता था कि उसके पद चिन्ह पे चल के वहां वो पहुंच गए। तो वहां जाकर मिली उसे देवयानी से, देखा कि देवयानी तो रो रही है पेड़ को पकड़ के, और पूछा क्या हुआ। देवयानी ने पूरी घटना सुनाई कि शर्मिष्ठा ने किस प्रकार से उसका अपमान किया, उसको फेंक दिया और उसके जीने मरने की परवाह नहीं की। और देवयानी ने धूर्णिका को बोला कि तुम पिताश्री के पास जाओ और उनसे बोलो कि मैं, क्योंकि मेरा शर्मिष्ठा ने अपमान किया है, मैं उस राज्य में वापस नहीं लौटूंगी, तो तुम जाकर संदेश ले दो। धूर्णिका गई वापस, ब्रुष्परवा की सभा में शुक्राचार्य बैठे थे और शुक्राचार्य को संबोधित करके पूरी घटना सुनाई धूर्णिका ने कि किस प्रकार से शर्मिष्ठा देवयानी का अपमान किया। ये सुनकर शुक्राचार्य तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और दौड़े जहां देवयानी खड़ी थी, फिर वहां देवयानी को खूब सांत्वना दी शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने देवयानी के पति की बात बताई, वो कहने लगे कि इस दुनिया में सभी लोग अपने कर्मों के कारण ही सुख दुख प्राप्त करते हैं, तुम्हें ये महान दुख प्राप्त हुआ है, तुमसे कुछ अपराध हो गया होगा, तुम्हारे किसी पाप कर्म का ये फल है, इसलिए तुम इसको भूल जाओ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के बहुत सारे दोष बताते हैं शुक्राचार्य, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरा जीवन अनेक प्रकार के यज्ञ करता है, सब प्रकार के यज्ञ अपने वर्णोचित यज्ञ करता है, परफेक्टली एकदम, उसमें कोई गलती नहीं है, और उसके सामने कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो कभी क्रोध नहीं करता, वो क्रोध नहीं करने वाला व्यक्ति उससे श्रेष्ठ है, यज्ञ करने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ है। क्रोध के अनेक दोष बताते हैं, तो शुक्राचार्य कन्विंस करने की ट्राई करते देवयानी को, तुम क्रोध को त्याग दो, सो क्षमा कर। देवयानी ने बोला कि ठीक है पिताजी, मैं भी धर्म जानती हूं, लेकिन जरा सोचिए, आप गुरु हैं और ये आपके शिष्य होने के बावजूद इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हमारा द्वेष करते हैं, तो ये बात तो ठीक नहीं है, और आप मेरी बात सुनिए। धूर्णिका ने अभी आपको पते की बात तो बताई नहीं है, मैं आपसे ये पूछती हूं कि क्या आप भीख मंगे हैं, क्या आप ब्रुष्परवा की सभा में खड़े होकर हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तब जाकर वो आपके सामने रोटी फेंकते हैं, क्या हमारा भरण पोषण ऐसे हो रहा है, क्योंकि शर्मिष्ठा ने ऐसी बात बताई। तो ये बात सुनकर शुक्राचार्य, और निर्यारी ने बताया कि शिष्य को किस प्रकार से गुरु के सामने शिष्यता का पालन करना चाहिए, और यदि शिष्य शिष्यता का पालन नहीं करता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, तो गुरु का कर्तव्य है कि उसको शिष्यता सिखाए, उसको सबक सिखाए ताकि वो प्रगति कर सके आगे। ये गुरु का कर्तव्य है, ऐसे देवयानी ने अपने तर्क दिए। और फिर ये सब बातें सुन के शुक्राचार्य को भी बहुत दुख हुआ कि वृषभ की बेटी शर्मिष्ठा ने ऐसी बात कही, इसलिए वो गए वापस वृषभ के पास। और वृषभ उनको देखते ही खड़े होकर अपने आसन से उनका सम्मान करने लगे। और शुक्राचार्य ने एक कड़वी वाणी में कहा कि क्या मैं तुम पर बोझा हूं, क्या मैं भीख मंगा हूं कि तुम्हारी स्तुति करके मेरा भरण पोषण होता है, या कभी मैंने विद्या भाषण करके मैं अपना काम निकालता हूं। तो ये बात सुनकर वृष प्रवाह को कुछ समझ में नहीं आया। वृष प्रवाह बोले कि गुरुदेव आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, मैं आपका दास हूं, आप भीख मंगे कैसे हो सकते हैं, आपकी कृपा से मैं जीवित हूं। जिस प्रकार से बृहस्पति देवताओं का भरण पोषण करते हैं, देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं, तभी वो अब स्वर्ग लोक में शासन करते हैं, उसी प्रकार से आपकी कृपा से ही मैं दानव का राजा हूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो शुक्राचार्य ने बताया कि शर्मिष्ठा ने ऐसी बात कही और कहा कि यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, और शुक्राचार्य कह रहे हैं कि क्योंकि शर्मिष्ठा ने इस प्रकार से देवयानी का अपमान किया है, हम लोग यहां पुनः वापस नहीं आ सकते, हम लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। शुक्राचार्य ने वृषभ को बोला कि हम लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे यहां से। तो ये बात सुनकर वृषभ बहुत डर गए, बोले कि गुरुदेव यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो फिर या तो हम लोग जल के मर जाएंगे, या तो फिर समुद्र में छुप जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि किसी भी अवस्था में यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां रहूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करूं, तो तुम देवयानी को प्रसन्न करो कैसे भी करके। तो वृषभ ठीक है बोले हम लोग चलते हैं उनके साथ, देवयानी के पास चलेंगे। तो दोनों वृषभ और शुक्राचार्य गए देवयानी के पास वन में, और फिर शुक्राचार्य से बातें निवेदन की, वृषभ ने जो जो कही थी बात। तो देवयानी ने बोला कि नहीं नहीं आप नहीं, राजा खुद बोले अपने मुंह से। वृषभ बोले कि बेटी ये मेरा जितना भी धन है, मैं खुद मेरा धन और जितने भी मेरी बेटी और जितने भी मेरे सेवक है, जितने भी मेरे सैनिक है, ये सब तुम्हारे दास है, तुम सबके स्वामिनी हो। तो ये बात सुन के देवयानी प्रसन्न हुई। देवयानी ने बोला कि मैं एक शर्त से आपके राज्य में हम लोग लौटेंगे। क्या शर्त है? कि शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों सहित मेरी दासी बन जाए। कल भी दासी की बात हुई थी, कंट्रोल में निकाल की, आज भी यही बात है, स्त्रियों में ही बड़ा रहता है ये सब, माफ करना लेडीज। तो देवयानी बोले कि शर्मिष्ठा मेरी दासी बन जाए, अपने 1000 सखियों के साथ तो मैं वापस चल सकती हूं। उसी समय वृषभ ने धूनिका को भेजा वापस, बोले जाओ और शर्मिष्ठा के सामने ये बात बताओ, शर्मिष्ठा को यहां लेकर आओ। धूनिका गई शर्मिष्ठा के पास और शर्मिष्ठा को बोला कि भामिनी खड़ी हो और अपने जाति भाइयों का हित करो, उनको इस मुसीबत से बचाओ, क्योंकि तुम्हारे अपराध से देवयानी और शुक्राचार्य बहुत अप्रसन्न है और तुम्हें छोड़ के अब सभी असुरों को छोड़ के जाने वाले हैं, तो अपने जाति भाइयों की रक्षा करो। तो शर्मिष्ठा बोले कि यदि ऐसी बात है तो मैं दिव्यानी की दासी बनने के लिए तैयार, अपने जाति भाइयों के लिए, अपने कुल को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो फिर वो उनकी 1000 सखियों के साथ लेकर वो वहां गई मन में और दिव्यानी के सामने निवेदन किया कि मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं। दिव्यानी बोली अरे अरे मैं तो भीख मंगे की बेटी हूं, तुम मेरी दासी कैसे बन सकती हो? उसको ताने मार रही है दिव्यानी। शर्मिष्ठा बोली नहीं नहीं जो भी हो मुझसे अपराध हुआ है तुम्हारा और अपने इस कुल को बचाने के लिए तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूं। और देवयानी ने यह भी शर्त रख ली शुक्राचार्य के सामने वृषभ के सामने कि जहां मेरा विवाह होगा वहीं शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ चलेगी। ऐसा ही होता था पहले, ट्रेडिशन ऐसी ही थी कि जो दासी होती है वो उसकी जिसकी दासी उसकी शादी हो जाए उसके साथ जाती थी, पहले ऐसी ट्रेडिशन हुआ था। तो ठीक हो गया, देवयानी खुश हो गई, सब लोग वापस लौट गए कुशप्रवा के नगर में। तो कुछ समय बीता, फिर उसी वन में वापस देवयानी और शर्मिष्ठा पहले की तरह जिस वन में पहले गए थे उसी वन में वापस वो लोग बिहार के लिए गए। और अब की बार तो देवयानी के थाट कुछ अलग और ही थे। तो देवयानी जब सीन ऐसा था कि वहां देवयानी एक बड़े से आसन पर बैठी हुई थी, वहां का बहुत रमणीय वातावरण था, तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूल वगैरह खिले हुए थे वहां, बहुत सुंदर वर्णन किया है महाभारत ने। और ये जो कन्याएं थी वहां वो मकरंद के फूल का रस का पान करती थी, फिर अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ जो लेकर गए थे वो खाती थी पीती थी, वहां के फल खाती थी, ऐसे आनंद अमोद प्रमोद करती थी वहां, बहुत खुश थी वहां। और फिर कुछ समय के बाद वो विश्राम करने के लिए बैठे तो देवयानी एक बहुत ही सुसज्जित आसन पर बैठी थी और शर्मिष्ठा उसके पैर दबा रही थी। और उस समय उसके साथ शर्मिष्ठा की 1000 सखियां और देवयानी की खुद की 1000 दासियां थी वहां, ऐसे टोटली 2000 कन्याएं और शर्मिष्ठा देवयानी वहां थे। देवयानी बैठी और शर्मिष्ठा उसके पैर दबा रही थी। और दैववश राजा ययाति वापस आखिर के लिए निकले उसी वन से, ये देखिए दीदी का विराम देखिए, उसी वन से ये लोग जब क्रीड़ा कर रहे थे उसी समय राजा ययाति वहां से पसार हो रहे थे और उन्होंने देखा इतना सीन देखा तो वहां गए। तो अब की बार क्योंकि शर्मिष्ठा और भी जो कन्याएं वहां थी इसलिए ययाति और देवयानी ने दोनों ने ही ऐसा नहीं जताया कि पहले मिल चुके हैं दूसरे को, उस भाव को छुपाया। उन दोनों ने ययाति ने और देवयानी ने एक दूसरे के फॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछे कि देवयानी ने पूछा कि आप कौन है, मैं नहुष पुत्र राजा ययाति हूं, इस प्रकार आखिर के लिए निकला हूं। और देवयानी ने भी अपना परिचय दिया कि मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं। और फिर देवयानी ने सांकेतिक भाषा में उसको वापस वो बात याद कराई राजा ययाति को कि आपने मेरा हाथ पकड़ा था इसलिए मैं ऑलरेडी आपका वरण कर चुकी हूं, आप मुझे स्वीकार करिए। और मेरे साथ ये मेरी जो दासी है शर्मिष्ठा और उसकी 1000 सखियां और मेरी 1000 दासियां वो भी आपके साथ आएंगी। तो राजा ययाति पुनः वही बात बोले कि हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है क्योंकि तुम ब्राह्मण कन्या हो और मैं क्षत्रिय हूं। पहले क्या हुआ करता था कि लड़कियां यदि किसी लड़की का हाथ कोई लड़का पकड़ लेता था मतलब वो हस्बैंड वाइफ हो गए, आई मीन ऐसा नहीं कि बाय दैट वेरी एक्टिविटी, लेकिन स्त्री का स्पर्श तो ऐसे कर नहीं सकता था। आजकल तो हम लोग कॉलेज में देखते हैं तो लड़के लड़कियां हाथ मिलाना तो बहुत छोटी बात है और भी बहुत कुछ करते हैं, वैलेंटाइंस डे होता है क्या क्या होता है लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, लेकिन पहले तो ऐसे बहुत सिर्फ नियम हुआ करता हाथ पकड़ लेना मतलब फिर उसको शादी करनी पड़ेगी उसके साथ, ऐसा नियम हुआ करता। तो देवयानी ने बोला कि वैसे भी आपने मेरा हाथ पकड़ा तो फिर मैं आपको अपना पति मानती हूं। राजा ययाति ने बोला नहीं ये बात ठीक नहीं क्योंकि इसमें वर्ण संकरता का दोष है। तो देवयानी बोली ठीक है आप मेरे पिता के द्वारा दी जाने पर तो मुझे स्वीकार करेंगे ना। राजा ययाति बोले हाँ यदि शुक्राचार्य स्वयं तुम्हें मुझे ऑफर करते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। इसलिए देवयानी ने तुरंत ही द्रोणिका को भेजा वापस शुक्राचार्य के पास और बोला कि इस प्रकार से मैसेज दिया कि देवयानी ने स्वयंवर विधि से राजा ययाति का वरण कर लिया है, आप कृपया आइए जल्दी से। द्रोणिका गई शुक्राचार्य को बुला के लाई और फिर देवयानी ने बताया कि ये नहुष नंदन राजा ययाति है और इन्होंने मेरी जान बचाई थी, जब शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में फेंक दिया था तब इन्होंने मेरी जान बचाई और यही मेरे योग्य पति हैं। क्योंकि राजा इयादी बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही तेजस्वी राजा थे और पूरी तरह से धर्म में स्थित थे, धर्म की कभी ग्लानि नहीं करते थे, अधर्म कभी नहीं करते थे। इसलिए देवयानी ने समझा कि यही मेरे उपयुक्त पति है, ये मेरा पति होने की योग्य है। और देवयानी की बात सही थी क्योंकि वैसे भी उसको ब्राह्मण पति नहीं मिलने वाला था क्योंकि कच्छ का शाप था। इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, एक बहुत ही तेजस्वी राजा क्षत्रिय राजा, वही ऑप्शन था उसका। और विधि का यही विधान था। तो शुक्राचार्य को इस प्रकार से पूरी बात बताई देवयानी। तो शुक्राचार्य इस रिश्ते से खुश थे। शुक्राचार्य बोले ठीक है मुझे रिश्ता मंजूर है। लेकिन ये आज बोले कि गुरुदेव इस संबंध में महान दोष है, तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा देवयानी के साथ विवाह हो तो फिर आप इस प्रतिलोम विवाह युक्त दोष से अधर्म से मुझे मुक्ति दीजिए, क्योंकि इस विवाह से वर्ण संकर प्रजा पैदा होने वाली है, उस वर्ण संकरता के अधर्म से मुझे मुक्त करिए आप। शुक्राचार्य ने बोला एवमस्तु तथास्तु, क्योंकि शुक्राचार्य इतने तेजस्वी थे इतने तपस्वी थे कि उनकी वाणी सच हो जाती थी, तो उन्होंने उस पाप से उसको मुक्त कर दिया जयजाति को। फिर दोनों का विवाह हुआ और विवाह होते समय शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये मेरी कन्या है देवयानी, उसके साथ ये शर्मिष्ठा है, ये भी तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि उसकी दासी है, उसके साथ ये और 2000 कन्या वो भी तुम्हारे साथ जाएगी उसकी दासी बनके, लेकिन तुम कभी भी शर्मिष्ठा का तुम सत्कार जरूर करना, उसको सम्मान देना, लेकिन तुम कभी भी उसको अपनी शेष की मत बुलाना, उसके साथ तुम्हारा कभी समागम नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजा लोग अक्सर ऐसा करते थे कि जो पत्नी की जो दासी होती थी उनके साथ ही उनका समागम होता था और उनसे फिर ऐसे पुत्र होते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्राचार्य ने कंडीशन रखी और राजा याद खुश थे देवयानी को पाकर, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। तो फिर राजा यादि देवयानी शुक्राचार्य और असुरों से सम्मानित होकर अपने राज्य को लौट गए, देवयानी को लेकर, देवयानी के साथ सर्विसार उनकी 2000 जो दासियां थी उनके साथ लेकर लौट गए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो देवयानी को तो अपने महल में रखते थे हमेशा, और सर्विष्ठा और उनकी दासियों के लिए दूसरी जो 2000 दासियां थी उनके लिए अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका मतलब एक ऐसा उपवन जहां बहुत सारे अशोक वृक्ष रहते हैं उसको अशोक वाटिका कहते हैं। अशोक वृक्ष होता है ना, बहुत सारे गोवा में भी देखे हैं। तो उसने वहां सर्विष्ठा के लिए महल बना दिया दूसरा, और वहां उनको खाने पीने की वस्त्र इत्यादि सब चीजें उनको देकर वो खुश रहते थे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं जाते, उसको स्पर्श नहीं करते थे। समय आने पर देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर क्या हुआ कि शर्मिष्ठा भी उसको वो रजस्वलावस्था में आ गई, वो पहले छोटी थी फिर धीरे धीरे रजस्वलावस्था में आ गई 1000 वर्ष के बाद। देखिए हम लोग ये ऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वृषप्रभा तो दानव की कन्या है, मनुष्य नहीं है, दानव कन्या है, और ये लोगों की आयुष्य बहुत लंबी चौड़ी होती थी, होती है अभी भी है, असुर लोग जैसे देवता है वैसे असुर भी। तो 1000 साल बीतने के बाद वो रजस्वलावस्था में आई, अर्थात उसके बाद उसको ऋतुकाल प्राप्त हुआ। ये लोग ऋतुकाल शब्द आप लोग समझते होंगे, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अर्थात वो जो स्त्री जो है वो बच्चा पैदा करने लायक बनती है रजस्वलावस्था में आने के बाद, वो बच्चा पैदा करने लायक बनती है। तो शर्मिष्ठा की अवस्था प्राप्त हुई और वो सोचने लगी कि देवयानी को तो पुत्र प्राप्त हो गया लेकिन मेरी जवानी तो व्यर्थ जा रही है, क्योंकि शुक्राचार्य ने कंडीशन रखी थी कि कभी भी शर्मिष्ठा के साथ समागम नहीं करना है। तो शर्मिष्ठा को बहुत चिंता हुई, इसलिए वो दुखी मन से अपने महल से बाहर निकली और बहुत ही अच्छा श्रृंगार करके वो निकली थी बाहर, और उसके पास एक आईना था तो एक अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई, उसका सहारा लेकर खड़ी, अपना चेहरा देख रही है आईने में, बहुत ही अच्छा श्रृंगार था और बहुत ही सुंदर कन्या थी की जो कन्या थी शर्मिष्ठा, बहुत सुंदर स्त्री थी। तो अपना चेहरा देखकर वो इस प्रकार से सोचने लगी कि मुझे किस प्रकार से मेरा पति का संग प्राप्त हो, क्योंकि मेरी तो जवानी व्यर्थ जा रही है। तो वो अशोक वृक्ष को प्रार्थना करिए कि तुम तुम्हारा सहारा लेने से प्राणी शोक रहित हो जाते हैं, अशोक तो तुम्हारा सहारा लेकर लोग शोक रहित हो जाते हैं। तो अपने तुम मुझे अपने नाम जैसा बना दो, अर्थात मुझे भी अशोक शोक रहित बना दो, मेरी इच्छा पूरी करो। तो जब ऐसा सोच रहे थे उसी समय दैववश राजा ययाति अकेले अपने महल से बाहर निकले। वो ज्यादातर तो देवयानी के साथ बाहर निकल गए, लेकिन क्या हुआ कि देवयानी का पुत्र प्राप्त हुआ तो बच्चे थे उसमें संभाल में वो बिजी थे, तो देवयानी अकेले बाहर निकले और उसकी नजर पड़ी शर्मिष्ठा के ऊपर। शर्मिष्ठा के पास गए देवयानी और शर्मिष्ठा ने फिर उनकी स्तुति की, उनको वंदना की और बोला कि आप मेरी भी इच्छा पूरी करिए थी, देवयानी को जिस प्रकार से पुत्र प्राप्त हो मैं भी आपकी पत्नी हूं, क्योंकि मैं देवयानी की दासी हूं तो इस प्रकार से आप मेरा मेरे ऊपर आपका सीधा अधिकार बनता है। तो ययाति ने बोला कि नहीं, शुक्राचार्य की शर्त थी, मैं तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सकता, तुम्हारे साथ कैसे मेरा समागम हो सकता। शर्मिष्ठा ने बताया कि जरा सोचिए, शर्मिष्ठा बहुत चतुर थी, बुद्धिशाली थी, उसने अपने तर्क दिए, बोले कि स्त्री दास और पुत्र के ऊपर वो जिसके अधिकार में है उसके धन पर उसी का अधिकार होता है, अर्थात स्त्री के धन पर पति का अधिकार होता है, दास के धन पर स्वामी का अधिकार होता है, पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। वो बोल रही है शर्मिष्ठा कि मैं देवयानी के अधीन हूं और देवयानी आपके अधीन है, तो फिर आप मेरा सेवन कर सकते हो, क्योंकि आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, जितना अधिकार देवयानी का मेरे ऊपर है उससे अधिक आपका अधिकार मेरे ऊपर है, क्योंकि देवयानी तो आपके अधीन है इसलिए आप मेरा सेवन करें। लेकिन ययाति झिझक रहे थे, शुक्राचार्य का भय लग रहा था, शुक्राचार्य ने कंडीशन रखी तो टाल रहे थे बात को। फिर शर्मिष्ठा ने ऐसा अस्त्र छोड़ा जो ययाति नहीं टाल सकते थे। शर्मिष्ठा ने बोला कि आप राजा हैं, आपने व्रत ले रखा है कि तीन संध्या में, सुबह दोपहर शाम में आप सबकी इच्छा पूरी करें, सब याचकों की इच्छा पूरी करते हैं, आप जो मैं मांगा वो चीज आप उनको देते हैं, तो मैं भी आपकी प्रजा हूं, तो मैं आपसे ऋतुदान भीख में मांग रही हूं, मुझे भी पुत्र दीजिए। तो यदि आप ये बात डालेंगे तो फिर आपकी प्रतिज्ञा गलत हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, तो ये बात राजा ययाति नहीं डाल सके। और वैसे भी शास्त्र में से आज्ञा दी है कि पत्नी की इस प्रकार से यदि इच्छा है तो उसको पूरी करनी चाहिए, नहीं तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है पुरुष को, ऐसे शास्त्र बताया। तो ययाति ने बहुत ही सोच विचार किया और फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, शर्मिष्ठा की इस बात को। तो फिर समय आने पर शर्मिष्ठा ने पुत्र को जन्म दिया। शर्मिष्ठा को पुत्र हुआ तो देवयानी को न्यूज मिलाई, देवयानी को पता नहीं था ये सब हो रहा, क्या चक्कर चल रहा है, तो देवयानी को ये पता चला इसके बारे में, तो सोचने लगी ये शर्मिष्ठा कुछ गड़बड़ कर रही है, कैसे इस प्रकार से पाप करने लगी। तो शर्मिष्ठा के पास गई और पूछा कि तुम, अरे तुम क्या कर रही हो, ये मेरी दासी होकर तुम इस प्रकार से पाप कर रही हो, मतलब ये नहीं बता रहा किसके साथ समागम हुआ था, कैसे पुत्र प्राप्त हुआ, ये नहीं बता रहा देवयानी। शर्मिष्ठा ने बोला मैंने किसी कोई अधर्म नहीं किया है और मैंने कोई शब्द नहीं तोड़ी है, मेरे पास एक ऋषि आए थे, बड़े तेजस्वी ऋषि थे, उनसे मैंने रुद्रदान मांगा और उन्होंने मुझे दिया। तो राजा ययाति ऋषि ही तो थे, राजर्षि थे ना, राजा ययाति राजर्षि थे, राजा के रूप में ऋषि, तो शर्मिष्ठा ने गलत नहीं बोला, सही बोला। तो देवयानी सुनकर हाँ ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुमने उस ऋषि का कौन और वो किस व्रत का पालन करते ये सब पूछा उससे। तो शर्मिष्ठा बोली कि वो इतने तेजस्वी थे कि ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं रही, मुझे उनके पूरा भरोसा था उनके गुण के ऊपर, इसलिए मैंने उनसे रुद्रदान प्राप्त कर लिया। तो देवयानी ये बात सुनकर खुश हो गए, बोले ठीक है, तसल्ली हो गई, और दोनों फिर एक दूसरे के साथ ऐसे हंसी मजाक करके फिर वो देवयानी वापस अपने महल में चली गई। समय आने पर देवयानी को दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ, देवयानी ने दो पुत्र उत्पन्न किए और शर्मिष्ठा ने तीन पुत्र उत्पन्न किए। देवयानी के दो पुत्र यदु और पूर्वसु और शर्मिष्ठा के पुत्र ध्रुवयु अनु और पुरु, ऐसे टोटली ययाति के पांच पुत्र उत्पन्न हुए, देवयानी से दो और शर्मिष्ठा से तीन। तो क्या हुआ, राजा ययाति एक बार देवयानी के साथ निकले थे, अभी कुमारावस्था में आ गए, कुमार हो गए, खेलने लगे बच्चे शर्मिष्ठा के। तो देवयानी एक बार ययाति के साथ वही अशोक वाटिका में घूमने के लिए निकली थी। तो देवयानी ने देखा कि तीन कुमार खेल रहे हैं शर्मिष्ठा के पास और गौर से देखा तो उसके रूप और गुण सब राजा ययाति की वजह से थे, क्योंकि देवयानी को तो पता नहीं था इसके बारे में। तो देवयानी ने बताया राजा से, ययाति से, अरे स्वामी ये कुमार तो एकदम हूबहू आपके जैसे दिखते हैं। और फिर उन्होंने ययाति चुप हो गए, एकदम कुछ नहीं बोले, क्या कुछ बोल नहीं सकते राजा ययाति। तो फिर वो कुमार से पूछे, अरे तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारा परिचय दो, तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम्हारे माता पिता कौन है। तो कुमारों ने अपना परिचय दिया, किसने क्या क्या नाम है उनके, ध्रुवयु अनु और पुरु, तीनों ने अपना परिचय दिया, अपनी उंगली दिखाई, उंगली से दिखा दी, ये राजा ययाति हमारे पिता है, टोपी भाषा में और ये शर्मिष्ठा हमारी मां है। तो ये सुनकर देवयानी के ऊपर वज्रघात हो गया, वो ययाति की तरफ देख रहे हैं, और ये बच्चे जो थे तीन कुमार वो अपने बाप को देखकर उनकी गोद में चढ़ने के लिए दौड़े उनके पास, और ययाति उस समय उनका अभिवादन नहीं कर पाए क्योंकि वो तो एकदम भौचक्के हो गए, एकदम वो उसका नहीं दे पाए, अपनी गोद में प्यार नहीं कर पाए बच्चों को, क्योंकि ययाति क्या हुआ, देवयानी खड़ी थी वहां। फिर बच्चे रोते रहते अपनी माँ के पास चले गए, शर्मिष्ठा के पास चले गए, और देवयानी से सहन नहीं हुआ। देवयानी ने ययाति से बोला कि स्वामी आपने शर्त का भंग किया, मैं अभी अपने पिता के पास जाऊंगी। देवयानी गई शुक्राचार्य के पास और पिता से बोला कि पिताजी इन्होंने आज जाकर बताया कि आज अधर्म ने धर्म को जीत लिया, नीच की उन्नति हुई और जो उच्च कोटि के थे उनकी अवनति हुई, उनकी अधोगति हुई। क्यों, देवयानी बोल रहे कि शर्मिष्ठा के तीन तीन बेटे हो गए और मेरे केवल दो ही हुए, और वो भी ये राजा ययाति के द्वारा, मेरे पतिदेव के द्वारा, तो आपकी शर्त इन्होंने तोड़ दी। तो ये बात सुनकर शुक्राचार्य को थोड़ा क्रोध आ गया, शुक्राचार्य ने बोला कि तुमने अधर्म किया। ययाति ने अपना तर्क दिया, जो एक्चुअली ययाति है कोई अधर्म नहीं करना चाहते थे, ययाति कभी अधर्म करते ही नहीं थे, वो बहुत धर्म प्रिय राजा थे, ययाति कभी अधर्म का काम नहीं करते थे। उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई कि शर्मिष्ठा इस प्रकार से रुपदान मांगने के लिए आई थी और मैंने सबको प्रजा को देने का प्रण ले रखा है, दान देने का प्रण ले रखा है, उसने इस प्रकार से मुझसे दान मांगा इत्यादि, तो मैंने इस प्रकार से धर्म का ही पालन किया है, ययाति वाज राइट, अपनी जगह पे वो ठीक है। लेकिन शुक्राचार्य ने बताया कि यदि ऐसी बात थी तो तुमने मेरे आदेश की प्रतीक्षा क्यों नहीं की, तुमने मुझसे अनुमति क्यों नहीं ली, ये बात भी ठीक। इसलिए शुक्राचार्य ने बोला कि तुम अभी जवानी का भोग नहीं कर पाओगे, जो जिससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, ऐसी जनावस्था तुम्हें धर दबोच लेगी, अर्थात वृद्धावस्था, तुम अभी के अभी बूढ़े हो जाओगे, बूढ़ा व्यक्ति तो भोग नहीं कर सकता। तो तुरंत ही राजा ययाति वहीं खड़े खड़े, देवयानी भी खड़ी थी शुक्राचार्य के सामने, राजा ययाति वहीं खड़े खड़े बूढ़े हो गए। ये सुनकर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए और शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़ के विनती की कि गुरुदेव अभी मैं भोग से तृप्त नहीं हुआ देवयानी के साथ भोग करके, इसलिए आप मुझे कुछ सुविधा कुछ उपाय करके दीजिए, मैं कोई भोग करना चाहता हूं। तो शुक्राचार्य ने बताया कि मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन जो तुम्हें स्वेच्छा से अपनी युवावस्था देगा उस युवावस्था से तुम भोग कर सकते हो, तुम अपना बुढ़ापा उस व्यक्ति को दे देना, और वो यदि तुम्हें देता है अपनी युवावस्था तो उसकी युवावस्था से तुम भोग कर सकते हो। तो ये सर हो गए दोनों, ठीक है। तो कुछ समय के पश्चात जब बच्चे बड़े हुए उनके थोड़े से, तो फिर राजा यजाति गए दिव्यानी के सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था यदु, यदु के पास गए और यदु से बोला कि तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो। बहुत लंबा चौड़ा वार्तालाप है, मैं नहीं सुनाऊंगा। इन शॉर्ट क्या होता है, पहले यदु के पास जाते हैं यदु, फिर नेक्स्ट है दुर्वसु, फिर शर्मिष्ठा के बेटा द्रुयु और अनु, इन चारों के पास राजा यजाति जाते हैं उनकी युवावस्था मांगने के लिए। ये सब लोग उनको वापस लौटा देते हैं, नहीं देते अपनी युवावस्था नहीं देते, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में बहुत दोष है। सब लोग वृद्धावस्था के दोष बताते हैं सभी चारों चारों के प्रति यजाति। तो यजाति ने उन सबको अपने राज्य से अलग कर दिया, सबको अलग अलग शाप दिए। यदु को बुला के तुम्हारी संतति कभी राजा नहीं बन सकती, दुर्वसु को बुला के तुम्हारी संतति यमनों के राजा बनेंगे, तुम्हारी संतति जो होगी वो यमन देश के राजा बनेंगे, यमन ही तुम्हारी संतति होगी धीरे धीरे करके समय आने पर। फिर द्रुयु को भी इस प्रकार से शाप दिया कि तुम कभी रथ पे आरूढ़ नहीं हो सकते, तुम्हें हमेशा पानी में रहना पड़ेगा। फिर अनु को शाप दिया कि तुम्हारी संतति जो है वो वृक्षों के राजा बनेंगे। इस प्रकार से अलग अलग शाप दिए। तो यदु के जो वंशज हुए वो यादव क्षत्रिय, यदु के जो पुत्र हुए वो कौन, यादव। यदुवंश में कौन पैदा हुआ, प्रकट कौन हुए, कृष्ण। कृष्ण स्वयं यदुवंश में प्रकट हुए थे, वो कथा अपने आप बहुत लंबी चौड़ी है, किसी और समय सुनाऊंगा। दुर्वसु की संतान है, कोई बता सकता है दुर्वसु की संतान, दुर्वसु की संतान के बसाया हुआ देश आज भी है इंडिया के बाहर, टर्की। टर्की नहीं है, तुर्किस्तान, वो दुर्वसु की संतति ने बचाया हुआ है, वो पूरा यमनों से भरा हुआ है। मुस्लिम लोग बहुत सारे हैं टर्की में, है ना, टर्की में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो सब यमन है, वो सब दुर्वसु की संतानों ने बसाया हुआ देश था टर्की। तो वो सब आर्यभट्ट से बाहर निकल गए, आर्य संस्कृति का पालन नहीं किया उन्होंने, वो आर्य नहीं, वो सब यमन दोनों के लोग हैं। फिर उसी प्रकार से द्रुयु के पुत्र भोज कहलाए, फिर अनु जो है अनु के पुत्र म्लेच्छ देश के राजा बने, फिर लास्ट में बचा पुरु। तो पुरु था उसके पास गए, सबसे छोटा सरसा का सबसे छोटा बेटा पुरु, उसके पास ये आते गए और बोला कि तुम अपना अपनी युवावस्था मुझे दो, मैं 1000 साल भोग करके तुम्हें युवावस्था तुम्हें वापस लौटा दूंगा, और उतने समय तक तुम मेरी वृद्धावस्था ले लो। पुरु ने बोला ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। पुरु जो थे वो अपने पिता की खुशी में खुशी मानता था विष्णुदेव की तरह, तो उन्होंने अपनी जवानी दे दी। 1000 साल तक राजा यादव ने भोग किया, अमरावती में भी जा सकते थे, राजा इंद्र के जो नंदन कानन वगैरह थे उसमें भी जाकर वो अप्सराओं से भी भोग कर सकते थे, राजा यादव का इतना पुण्य था। और अपने शासन काल में उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए, कोई पाप नहीं किया, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, दान किए, ब्राह्मण को खुश किया, ऐसे अनेक उन्होंने सत्कर्म किए, और साथ में धर्म के विरुद्ध नहीं हो ऐसे काम भोग भी किया, सुख भी भोगा। 1000 साल की अवधि समाप्त हो गई। उसने वर्णन किया है महाभारत में कि यदि हमेशा एक एक क्षण उनको यह स्मृति रहती थी कि 1000 साल के बाद मुझे भोग छोड़ना पड़ेगा, उनको वो दुखी हो जाते थे बात सोच के। फिर उनकी अवधि समाप्त हो गई, वो गुरु के पास गए और गुरु को उनकी जवानी वापस लौटा दी और बुढ़ापा को वापस ले लिया। उसके बाद यजाति ने गीत गाया, यजाति ने क्या बोला कि मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा माने भोग करने की लालसा। बोले कि कोई मनुष्य कितना भी भोग कर ले, किसी एक पुरुष को पूरे संसार के सभी धन धान्य जौ वस्त्र आभूषण स्त्री सब कुछ भोग भोग करने के लिए दे दो किसी एक पुरुष को, वो भी पर्याप्त नहीं होता है उसके लिए। ये भोग ऐसा है जैसे अग्नि में यदि आप घी डालोगे उससे अग्नि बुझती नहीं है, उससे वो अग्नि और प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से ये तृष्णा जो है उसमें ये भोग रूपी जितना जब घी डालो उसमें तृष्णा और बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति को चाहिए कि वो तृष्णा को त्याग दे, भोग की लालसा को त्याग के अपना मन श्री हरि में लगाए। क्योंकि ययाति ने अनेक ब्राह्मणों की सेवा की थी, अनेक वैष्णवों की सेवा की थी, इसलिए उनके चेतना में ये वैराग्य बुद्धि का, वैराग्य विद्या का उदय हुआ। इसलिए सब छोड़ छाड़ के गुरु को अपनी ये व्यवस्था लौटा के वो चले गए वन में। दिव्यानी भी उनके साथ गई, वन में जाकर दोनों ने तपस्या की, दिव्यानी ने अपना मन श्रीहरि में लगाया। और क्योंकि देविया ने अपने पति का ही अनुगमन किया, अनुसरण किया, इसलिए ययाति और देवयानी क्योंकि श्रीहरि की भक्ति की उन्होंने अंततः भगवान के धाम में गए, वैकुंठ धाम में गए। ये कथा भागवतम में है। तो ययाति की बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। ययाति ने ये बताया कि कितना मनुष्य कितना भी भोग कर ले वो कभी इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए अपना मन भोग वृत्ति से हटा के अपना मन किस में लगाना चाहिए, श्रीहरि के चरण में लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, उसी से हमारा वास्तविक कल्याण होता है। फिर ययाति के जो सबसे छोटे बेटे अर्थात शर्मिष्ठा के सबसे छोटे बेटे, क्या नाम था उसका, पुरु, पुरु के पुत्र और वंशज उनके पौरव कहलाए, और पुरु वंश से ही फिर कुरु आए, कुरु से कौरव आए, उसी में धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए, और उसी में पांडव हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और पांडु से पांडव हुए, और धृतराष्ट्र से सौ कौरव। एक्चुअली पांडु और धृतराष्ट्र की दोनों की संतानें कौरव ही कहलाती थी क्योंकि दोनों कुरुवंशी हैं। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के पूर्वज थे कुरु, राजा कुरु, तो दोनों वास्तव में धृतराष्ट्र और पांडु की संतानें वैसे तो कौरव ही थे, लेकिन दोनों में क्योंकि डिवीजन हो गया, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। दुर्योधन आदि पार्टी ने अधर्म का मार्ग लिया, पांडवों ने धर्म का मार्ग लिया, इसलिए दो फैक्शन हो गए, इसलिए पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। तो ये जो पूरा वंश आया धृतराष्ट्र और पांडु का वो कुरु से आया। अर्थात दिव्यानी का जो शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा, ययाति का सबसे छोटा बेटा, कुरु से कौरव, फिर उसी से कुरु, उसी से कौरव पांडव आए। तो ये कथा यहां समाप्त होती है। तो इस कथा को श्रवण करने की वही फलश्रुति है क्योंकि राजा ययाति के वंश में ही श्री कृष्ण स्वयं पैदा हुए, प्रकट हुए, यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए, और कुरु के वंश में पांडव जैसे महान वैष्णव पैदा हुए। इसलिए महाभारत ने बताया कि जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके हृदय में श्री हरि के चरणों में भक्ति का उदय होता है, अंततः उसकी भगवान के चरणों में भक्ति सुदृढ़ होती है, वो भगवान के नाम में जाता है। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की, महामुनि व्यास की, श्रील प्रभुपाद की।